Dr. Robert Yarbrough, The Johannine Epistles, Balancing Life in Christ, Sutra 8, 1 John, Full Scale Faith. Khand 6, 4, 155, 15, Avashek Nirdesh, Khand 7, 5, 1621, Samapan Chetavni. Yeh Dr. Robert Yarbrough aur Johannine Epistles, Balancing Life in Christ par unki shiksha hai. Yeh Sutra 8, 1 John, Full Scale Faith hai. Khand 6, 4, 155, 15, Avashek Nirdesh, Khand 7, 5, 1621, Samapan Chetavni. Hum John ke patron mein apne aakhiri vyakhyan par aate hain, aur hum John ke patron ke baare mein baat kar rahe hain, khas taur par Masih mein jeevan ko santulit karne ke sandarbh mein, aur yah ki jeevan Yeshu mein vishwas se shuru hota hai, और यह विश्वास उसकी आज्ञाओं का पालन करने और उसके जैसा चलने में खिलता है। लेकिन जो चीज इसे जीवंत और वास्तविक बनाती है, वह यह है कि ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारा ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है। इसलिए हमारे पास विश्वास होता है और हमारे पास मसीह की शिक्षाओं, पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं, पुराने और नए नियम की शिक्षाओं के प्रति प्रतिक्रिया होती है, इस हद तक कि वे हमारे समय और हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक हैं। और विश्वास, कर्म और प्रेम वे चीजें हैं जो संपूर्ण और संतुलित ईसाई जीवन प्रदान करती हैं। और मैं इन व्याख्यानों को सबसे पहले जॉन, पूर्ण पैमाने पर विश्वास, पूर्ण पैमाने पर विश्वास, या आप इसे पूर्ण पैकेज विश्वास कह सकते हैं। यह वह सब कुछ है जो विश्वास होना चाहिए। यह सिर्फ किसी विचार या सिद्धांत पर विश्वास करना या यीशु के बारे में सच्चाई पर विश्वास करना नहीं है। यह मसीह पर इस तरह भरोसा करना है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करे और हमारी भक्ति को बदल दे। हमारी भक्ति शायद खुद के लिए थी या सिर्फ जीविका कमाने के लिए थी। हमारी भक्ति परमेश्वर की प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देने में बदल जाती है, न कि अपनी प्राथमिकताओं को, और परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर के मार्गदर्शन, परमेश्वर के राज्य में अपनी दिशा और ध्यान खोजने में, न कि उस राज्य में जिसे हम अपने दम पर बना रहे होते। तो हमने कई खंडों को देखा है। हमने वन यूहन्ना के केंद्रीय बोझ को देखा है, परमेश्वर प्रकाश है। हमने मुख्य आज्ञा देखी है, जो एक दूसरे से प्रेम करने के सदियों पुराने संदेश को मूर्त रूप देना है। हमने यूहन्ना द्वारा दी गई मुख्य सलाह के बारे में बात की है, जो है मसीह में बने रहना और अनंत जीवन प्राप्त करना। हमने उसकी चेतावनी पर विचार किया है, जो एक दूसरे से प्रेम करने, कैन की तरह घृणा न करने और हाबिल को मार डालने के लिए एक प्रोत्साहन भी है। पिछले व्याख्यान में हमने आधारभूत अनिवार्यता के बारे में बात करना समाप्त किया। यदि वन यूहन्ना से कोई एक आज्ञा उभर कर आती है, तो वह है मसीह के बारे में विश्वास और सच्चाई तथा परमेश्वर के साथ संबंध की गुणवत्ता, जिसे हम प्रेम कहते हैं। वह है एक दूसरे से प्रेम करना, और यह परमेश्वर के प्रेम से बढ़ता है। और अब हम अंतिम दो खंडों को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं, और ये खंड उस तरीके से आते हैं जिस तरह से बीजांतिन काल में यूनानी नए नियम को विभाजित किया गया था। इसलिए अंग्रेजी संस्करणों में अध्याय और छंद होने से पहले बीजांतिन चर्च 1000 साल तक और शायद आज भी, जब वे चर्च की पूजा में अपनी बाइबल पढ़ते हैं, तो ये वे विभाजन हैं जिनका वे पालन करते हैं। और इसलिए मैं इन विभाजनों का अनुसरण कर रहा हूँ, और फिर मैं बस यह वर्णन कर रहा हूँ कि मैं प्रत्येक विभाजन में क्या देखता हूँ, और इसी तरह मैं वन यूहन्ना को विभाजित कर रहा हूँ। यह इसे 5 अध्यायों से थोड़ा अलग बनाता है, लेकिन यह आंशिक रूप से मेरी ओर से जानबूझकर किया गया है। मैं जानता हूँ कि हर किसी ने वन यूहन्ना पढ़ा है। यह एक सरल किताब है, यह एक छोटी किताब है। आप जानते हैं कि 5 अध्याय क्या हैं, और मुझे लगता है कि इससे मुझे इसे अलग तरीके से देखने में मदद मिलती है कि 1000 साल से दूसरे लोगों ने इसे कैसे विभाजित किया, और यह उनके लिए इन तरीकों से समझ में आया। और इसलिए मैं इसे अलग क्रम में देखने के बजाय कुछ अलग कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ दो खंड हैं। एक आवश्यक निर्देश है और वह निर्देश यीशु पर विश्वास करने से संबंधित है, और फिर एक समापन चेतावनी है, और हम इन दोनों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले खंड 6, आवश्यक निर्देश, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना। और हम देखते हैं कि यह 5 उपभागों में विभाजित है, और मैं उन्हें जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ ऐसे ही तक पढ़ता हूँ। सबसे पहले हमें एक निमंत्रण मिलता है, लेकिन यह एक ऐसा निमंत्रण है जो वास्तव में एक घोषणा है, और यह एक ऐसा निमंत्रण है जिसके लिए इसका समर्थन है। जॉन द्वारा प्रस्तुत एक वारंट है। जो कोई भी यह स्वीकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें रहता है और वह परमेश्वर में रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के उस प्रेम को जान गए हैं और उस पर विश्वास करने लगे हैं जो हमारे लिए है। परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है। उस पीले भाग में सभी लाल अक्षरों पर ध्यान दें, और यह हमें याद दिलाता है कि वन यूहन्ना कुल मिलाकर कितना परमेश्वर केंद्रित और मसीह केंद्रित है। यही ईश्वर के बारे में एक किताब है, यह मसीह के बारे में एक किताब है। हम उन आयतों के बारे में ऐसा कह सकते हैं, हमने बस कुछ अद्भुत पढ़ा है। यीशु का वैध अंगीकार, जो कोई भी यह अंगीकार करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और उसका मतलब है कि उसके पत्रों में अन्य सभी स्थानों के पूर्ण और गर्भवती अर्थ में जहां वह यीशु के बारे में बात करता है, और यीशु देह में आया, और यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और यीशु मसीह, मसीहा, परमेश्वर से वादा करने वाला उद्धार करता है। जो कोई भी यह अंगीकार करता है कि यीशु द्वार खोलता है, वह अंगीकार परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के आश्वासन का द्वार खोलता है। परमेश्वर उसमें रहता है और वह उसमें रहता है, और यह विश्वासियों के प्रेम से पुष्टि होती है। हम जानते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम में रहता है वह परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है। तो इसका दूसरा भाग, पद 16, ध्यान दें कि यह यीशु के सच्चे स्वीकारोक्ति से विकसित होता है। इसलिए लोग इसे अलग करना पसंद करते हैं, और ईसाई धर्म को प्रेम, एक दूसरे से प्रेम या उसकी आज्ञाओं का पालन करने तक सीमित कर देते हैं। लेकिन हम जॉन में बार बार देखते हैं कि इनमें से एक चीज दूसरे से विकसित होती है। यह दूसरे का निहितार्थ है और हम उन्हें कभी अलग नहीं कर सकते। इसलिए जब हम इस व्यापक खंड, इस आवश्यक निर्देश को देखते हैं, तो हम सबसे पहले स्वीकार करने, विश्वास करने, प्रेम करने के इस निमंत्रण से शुरू करते हैं। फिर हमें इस प्रेम की प्रशंसा मिलती है कि यह प्रेम हमारे साथ क्यों परिपूर्ण है, ताकि हमें न्याय के दिन भरोसा हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। प्रेम में कोई भय नहीं होता, बल्कि परिपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है, और जो कोई भय करता है वह प्रेम में परिपूर्ण नहीं हुआ है। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करता हूँ, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता जिसे उसने देखा है, वह परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता जिसे उसने नहीं देखा। इस आज्ञा में हमें उससे यह मिलता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसे अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए। पद 17 में नंबर 1 पर ध्यान दें कि एक विश्वासी का प्रेम प्रकट करना न्याय के भय के विरुद्ध अपराध है। यह प्रेम परिपूर्ण है, इसलिए हमें न्याय के दिन पर भरोसा होगा। हमें हर समय न्याय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब हम ऐसा करेंगे, और ऐसे समय भी होते हैं जब हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर के वादों और परमेश्वर के कार्यों में से एक है। परमेश्वर दुनिया में धार्मिकता को बनाए रखता है और व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर, समय के साथ चीजें ऊपर उठती और गिरती हैं, और हम अक्सर उन्हें लोगों के पतन के साथ सहसंबंधित कर सकते हैं। और बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर लोगों का न्याय करता है, और बाइबल सिखाती है, जैसा कि इब्रानियों ने कहा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त किया गया है और इसके बाद न्याय आता है। इसलिए हम जीवन, प्रेम, विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर जोर देना चाहते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं यदि हम इस वास्तविकता को नकारते हैं कि किसी दिन हम मरेंगे और फिर हमारा मूल्यांकन किया जाएगा। हमने कैसे जीवन जिया? हमने किस पर भरोसा किया? हमने कैसे प्रेम किया? और परमेश्वर के प्रेम को जानने और परमेश्वर के प्रेम को अपने भीतर परिपूर्ण होने देने के लाभों में से एक यह है कि यह हमें न्याय के भय से बचाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम उस प्रेम में बढ़ते हैं, हम अधिक से अधिक जागरूक होते जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना लिया है और परमेश्वर हमें दोषी नहीं ठहराएगा। जैसा कि पॉल कहते हैं, जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए कोई निंदा नहीं है। यहाँ अक्षर बी से दूसरा निष्कर्ष, प्रेम की प्रशंसा, हमारा प्रेम हमारे लिए परमेश्वर के पिछले प्रेम से बढ़ता है। यूहन्ना 1:13 कहता है कि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हमारे उद्धार में परमेश्वर का हाथ था, जो विश्वास करने में हमारे अपने हाथ से भी बड़ा है। और श्लोक 19 बहुत ही संक्षिप्त रूप से कहता है, हम प्रेम करते हैं यदि हम मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध में हैं, तो हमारे पास जो प्रेम है वह हमारे लिए पहले जो कुछ किया उससे बढ़ता है, और यह हमारे जीवन में निरंतर प्रकट होता है। यह प्रेम की प्रशंसा है जो हमें यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने की महान सेवा करती है कि हमारा प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में कहां से आता है। यह परमेश्वर के कार्य से आता है। तीसरा, अन्य विश्वासियों के प्रति प्रेम के बिना परमेश्वर के प्रति प्रेम एक विरोधाभास है। आप प्रामाणिकता के साथ यह नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई की अवहेलना करता हूं, क्योंकि यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते जिसे आप देखते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप नहीं देख सकते। यह अकाट्य तर्क है। इसके बाद आस्था की प्रशंसा है, लेकिन एक खास तरह की आस्था। मैं यहाँ कल्पना करने जा रहा हूँ और लैटिन वाक्यांश को इसमें शामिल कर रहा हूँ। फाइडेस क्वा क्रेडिटर के अर्थ में विश्वास की प्रशंसा, और इसे परिभाषित किया जा सकता है, लैटिन में इसे उस विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा हम विश्वास करते हैं, या मेरा विश्वास, या हमारा व्यक्तिगत विश्वास, और यह विश्वास के दूसरे अर्थ के विपरीत है जिसके बारे में मैं एक मिनट में बात करूंगा। लेकिन यहाँ जॉन मसीह में व्यक्तिगत विश्वास की प्रशंसा करता है। हर कोई जो यह मानता है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से पैदा हुआ है, और हर कोई जो पिता से प्रेम करता है, वह उससे प्रेम करता है जो उससे पैदा हुआ है। इसका मतलब शायद दूसरे विश्वासियों से है, लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है, और वह विजय जो संसार पर जय पाती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है सिवाय उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब यह विश्वास के संदर्भ में विरोधाभास है, और यह प्रेम के संदर्भ में विरोधाभास है। सबसे पहले ध्यान दें कि विश्वास एक क्रिया है जो परमेश्वर के पुनर्जन्म कार्य से उत्पन्न होती है और प्रेम में परिणत होती है। हर कोई जो विश्वास करता है, प्यार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, यह एक क्रिया है। यह यीशु मसीह की दिशा में निर्णय लेने और प्रतिबद्ध होने की मेरी क्षमता का प्रक्षेपण है। इसलिए मैं एक शब्द गढ़ने जा रहा हूँ, विश्वास करना। आप जानते हैं विश्वास एक क्रिया के रूप में। विश्वास करने से परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना होता है, श्लोक 2 और 3। इससे हम जानते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं और आज्ञा मानते हैं तो हम प्रेम करते हैं। इसलिए वह श्लोक 1 में विश्वास करने से 2 और 3 में प्रेम करने और आज्ञा मानने की ओर बढ़ता है। और वे आज्ञाएं जिनका हम पालन करते हैं, ईमानदारी से कहें तो कभी कभी वे बोझिल लगती हैं, लेकिन जब हमारा दिल सही होता है तो परमेश्वर की आज्ञाएं आनंददायक होती हैं। वह कितना धन्य है जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता, उपहास करने वालों की सीट पर नहीं बैठता, बल्कि उसका आनंद टोरा, मार्गदर्शन, प्रभु की शिक्षा में है। और अपने टोरा में, अपनी शिक्षा में वह दिन रात ध्यान करता है। विश्वास का परिणाम ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, जो ईश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्यों को करने में आनंद लेना सीखता है। नंबर 3, हमारे विश्वास के माध्यम से, हमारे विश्वास के माध्यम से, याद रखें कि हम यहाँ क्रिया के रूप में इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे विश्वास के माध्यम से दुनिया पर विजय प्राप्त होती है। क्योंकि यह विश्वास मसीह को हमारे जीवन के दृश्य में, हमारे अस्तित्व के मूल में और हमारे दृष्टिकोण के पूरे क्षितिज में आमंत्रित करता है। विश्वास दुनिया पर विजय प्राप्त करता है, जो जॉन की शब्दावली में ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि विश्वास यीशु ईश्वर के पुत्र को दृश्य में लाता है। इसलिए यूहन्ना यहाँ आवश्यक निर्देश देते समय व्यक्तिगत विश्वास की सराहना करता है। यह बहुत जरूरी है कि हम उस शिक्षा में पुष्ट हों जिसकी हमें जरूरत है और जो हम कर सकते हैं कि हमें यीशु पर विश्वास करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन अब वह एक अलग अर्थ में विश्वास की सराहना करने जा रहा है। यह फाइडेस्क्वा त्वा नहीं है, यह फाइडेस्क्वा क्यूयूएई है। और इसका मतलब है वह विश्वास जिस पर विश्वास किया जाता है। यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है, लेकिन मैं किस पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं किस पर विश्वास कर रहा हूँ। और मैं एक ऐसे यीशु पर विश्वास कर रहा हूँ जिसने कुछ ऐसे काम किए जिनका एक निश्चित अर्थ और एक निश्चित महत्व है। और आप इसे परिमाणित कर सकते हैं और आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। और वास्तव में दूसरी शताब्दी से ही चर्च में एक स्वीकारोक्ति है जिसे आज प्रेरितों का पंथ कहा जाता है, और यह यीशु के बारे में कुछ बहुत ही निश्चित बातें कहता है। मैं यीशु मसीह, उनके इकलौते पुत्र, हमारे प्रभु में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण किए गए, वर्जिन मैरी से पैदा हुए, पोंटियस पिलातुस के अधीन पीड़ित हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे, दफनाए गए, वे नरक में उतरे, तीसरे दिन वे मृतकों में से फिर से उठे, वे स्वर्ग में चढ़े, वे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए वहां से आएंगे। यही विश्वास है। जब यीशु की बात आती है तो यही ईसाई धर्म है। यह उनके द्वारा किए गए कुछ कामों की रूपरेखा है और वे कारण हैं जिनके कारण हम उन्हें परमेश्वर पिता के बराबर मानते हैं। मैं ईश्वर पिता में विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ जो उनके इकलौते पुत्र हैं, मैं धर्म सिद्धांत के तीसरे अनुच्छेद पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। यही ईसाई धर्म का कथन है। और जॉन यहाँ ईसाई धर्म की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पहले ही मेरे विश्वास और आपके विश्वास की सराहना की है। और जब आप विश्वास करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको विश्वास में विश्वास करना होगा। विश्वास में विश्वास या सिर्फ सामान्य विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। यह विश्वास होना चाहिए कि मसीह ने वास्तव में खुद को क्या दिखाया, जिसने परमेश्वर को वैसा ही दिखाया जैसा वह है। यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया, यीशु मसीह। केवल पानी के द्वारा नहीं, बल्कि पानी और लहू के द्वारा। और आत्मा ही गवाही देता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। क्योंकि गवाही देने वाले तीन हैं, अर्थात आत्मा और पानी और लहू, और ये तीनों एक ही बात कहते हैं। यदि हम मनुष्यों की गवाही मान लें तो परमेश्वर की गवाही तो और भी बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर की गवाही यही है कि वह अपने पुत्र के लिए जन्मा है। इस पर ध्यान दें, यह परमेश्वर की गवाही है। यह उस सत्य के बारे में है जिस पर हम अपना विश्वास रखते हैं। जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने आप में गवाही रखता है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता उसने उसे झूठा ठहराया है, क्योंकि उसने परमेश्वर की उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो उसने अपने पुत्र के विषय में दी है। और यह गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। कुछ अवलोकन। पहला, छंद 6 में पानी और खून संभवतः मसीह के बपतिस्मा और उनके क्रूस पर चढ़ने से संबंधित है। अब इसके बारे में अन्य सिद्धांत भी हैं, मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि यह संभवतः यीशु का अपने मंत्रालय के आरंभिक दिनों में आना है। जॉन के सुसमाचार में जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें परमेश्वर का मेमना कहा है जो संसार के पापों को दूर ले जाता है, और यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया और इसने उसके मसीहाई सेवकाई की शुरुआत की। और फिर वह मरने के लिए भी आया और उसने पाप के लिए अपना खून बहाया। दूसरे, आत्मा और पुत्र और पिता, इस पूरे मार्ग में लाल अक्षरों पर ध्यान दें। आपके पास यीशु मसीह है या आपके पास पुत्र है, आपके पास परमेश्वर है, आपके पास आत्मा है। ये सभी इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। फाइडेस का हिस्सा है यह विश्वास है। यीशु ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपना मिशन पूरा किया। तीसरा, विश्वासी इस अनुच्छेद की घोषणाओं से सहमत हैं। जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास स्वयं में गवाही है। तो आस्था मेरे विश्वास में मौजूद है, एक आस्तिक के रूप में मेरी आस्था। अब जॉन इस पर फिर से जोर देना चाहता है क्योंकि उसके पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चर्च या चर्चों को छोड़ दिया है, और उनके छोड़ने का एक कारण यह है कि वे यीशु मसीह के आने पर उस अर्थ में विश्वास नहीं करते थे जैसा कि जॉन यहां प्रस्तुत कर रहा है। यीशु के बारे में कुछ ऐसा था जो अलग था, कि वह पाप के लिए नहीं मरा या कि वह परमेश्वर का पुत्र नहीं था। यीशु के बारे में आपकी धारणा में कई तरह की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यूहन्ना अपने पत्र के अंत के करीब है। वह इस बात पर फिर से जोर दे रहे हैं कि हम यीशु के बारे में क्या मानते हैं जो उन्हें उन महान कार्यों को करने में सक्षम बनाता है जिनका श्रेय हम उन्हें देते हैं, और विश्वासी उन घोषणाओं से सहमत होते हैं। और यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो आपको यीशु परमेश्वर के पुत्र के बारे में अपने ज्ञान को ताजा करने और अपने क्षितिज का विस्तार करने की आवश्यकता है, और सुनिश्चित करें कि आप उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं जिसने यीशु में अपनी पूर्णता में खुद को प्रकट किया है, जो आया और उसने वे सभी कार्य किए जो शास्त्र हमें बताता है कि उसने किए, और हमें उन पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। चौथा, हमें मसीह के बारे में जो विश्वास करने के लिए कहा गया है उसका परिणाम अनंत जीवन है यदि हम वह स्वीकार करते हैं जो उसने किया है। इसका परिणाम विपरीत भी होता है यदि हम इसे अस्वीकार करते हैं। आप जानते हैं, पहले हमने देखा कि विद्वत्तावादी चले गए हैं, उनका यीशु के बारे में अलग दृष्टिकोण है। 3 यूहन्ना में हम दियोत्रिफेस के बारे में पढ़ते हैं, उसने यूहन्ना के अधिकार को स्वीकार नहीं किया और उसने उन लोगों को बाहर निकाल दिया जो चीजों के बारे में प्रेरितों के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्हें अनंत जीवन नहीं मिलने वाला था जब तक कि वे कुछ बदलाव न करें। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। तो यह उस विश्वास की एक अद्भुत प्रशंसा है जिसके द्वारा परमेश्वर पापियों को अपने लिए दावा करने, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाने और हमें परमेश्वर की सभाओं में मसीह की दुनिया भर में शामिल करने का अपना कार्य करता है, जो उसकी आवाज सुनते हैं, उसके उद्धार संदेश को साझा करते हैं और एक दूसरे के प्रति और बड़ी दुनिया के प्रति उसके प्रेम को जीते हैं। हम वन यूहन्ना में अपने सातवें भाग में आते हैं। यह एक समापन चेतावनी है और वह सच्चे परमेश्वर और धोखेबाजों के खतरे के बारे में बात करने जा रहा है। सो पहले तो पापियों और पाप के विषय में यह परामर्श है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे जीवन देगा, क्योंकि जो लोग ऐसे पाप करते हैं जिनका फल मृत्यु न हो, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु होता है। मैं यह नहीं कहता कि किसी को इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गलत काम पाप हैं, लेकिन ऐसा पाप भी है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। इन आयतों के बारे में कई पन्ने लिखे गए हैं और यहाँ जो कहा जा रहा है उस पर टिप्पणीकारों के बीच कोई व्यापक सहमति नहीं है, और मैं इस व्याख्यान में समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें कहने की कोशिश करूँगा जो मुझे लगता है कि जॉन जो कह रहा है उसके लिए उचित अनुप्रयोग या व्याख्याएं हैं। एक बात जो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं वह यह है कि विश्वासी एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के अपरिहार्य पापों की निंदा करके नहीं, क्योंकि हम सभी पाप करने जा रहे हैं, लेकिन हम पाप करने जा रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के पापों का हिसाब नहीं रखना चाहिए या एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब शायद हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना चाहिए, शायद हमें उनसे बात करने की जरूरत है, शायद हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, और अगर वे किसी चीज से जूझ रहे हैं तो शायद कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम उनकी मदद कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें पता चलता है कि जॉन को नहीं लगता कि, हालांकि उसने पहले कहा था कि जो कोई भी परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप नहीं करता है, लेकिन वह विश्वास के समुदाय में जानता है कि विश्वासियों को ठोकर लगनी है और इसलिए हमें बहाली के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वह कहता है कि एक पाप है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, और मैं यह नहीं कहता कि किसी को उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह उससे संबंधित है जो मैं यहाँ नंबर दो के साथ कह रहा हूँ। कुछ पाप अंतिम दिशा में ले जाते हैं, ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर से अलग होने की ओर ले जाते हैं, और वन यूहन्ना के व्यापक संदर्भ में मैं सुझाव दूंगा कि इनमें अविश्वास के पाप शामिल होंगे, जैसे कि आप चर्च में हैं लेकिन आप मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, या आप चर्च में नहीं हैं और आप मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, यह अधर्म जैसे पाप होंगे। उन्होंने कहा कि पाप तो पाप है, लेकिन फिर कुछ प्रकार के पाप हैं, वे परमेश्वर के विरुद्ध घोर विद्रोह हैं। शायद मेरा मतलब है, कभी कभी इस चर्चा में लोग यीशु द्वारा अक्षमय पाप कहे जाने वाले लोगों को सामने लाते हैं जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध ईशनिंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों के बीच एक रिश्ता है। मुझे नहीं पता कि असल रिश्ता क्या है, लेकिन निश्चित रूप से यह मौत का पाप है। अगर यीशु कहते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ ईशनिंदा करते हैं उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, तो यह निश्चित रूप से एक घातक पाप है। तो कुछ पाप घातक होते हैं, और वह कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि किसी को उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वह यह कह रहे हैं कि सभी विश्वासियों को हर उस पाप के लिए मध्यस्थता में शामिल नहीं होना चाहिए जिसके बारे में उन्हें पता चलता है। जूड का अंत लोगों पर दया दिखाने की बात करता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा डर के साथ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुद को शामिल करना खतरनाक होता है जो बहुत विनाशकारी व्यवहार करता है, और अगर आप उनकी मदद करने की कोशिश में शामिल होते हैं, तो यह आपके अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां लोग दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसमें उलझ गए हैं और इसने उन्हें भी नीचे गिरा दिया है। और बाहर से यह बताना मुश्किल हो सकता है कि किसी का पाप मृत्यु तक का पाप है या मृत्यु तक का पाप नहीं है। इसलिए जॉन यह नहीं कह रहा है कि देखो, तुम लोगों को जो कुछ भी करते हुए देखो उस पर कूद पड़ो और तब तक उसके साथ रहो जब तक कि तुम उन्हें ठीक न कर दो। मृत्यु तक के पाप आप ठीक नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अगर आप यिर्मयाह की पूरी किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यिर्मयाह की किताब में उसने एक शहर और ऐसे लोगों के लिए 40 साल या उससे ज्यादा की सेवकाई की थी जो परमेश्वर से दूर हो रहे थे और परमेश्वर उनका न्याय करने जा रहा था। और उसने अपनी सेवकाई के साथ संघर्ष किया, लेकिन कुल मिलाकर वह उन लोगों से प्यार करता था। वह उन लोगों के प्रति समर्पित था। और तीन अलग अलग मौकों पर परमेश्वर को यिर्मयाह से कहना पड़ा, इन लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद करो। और इसका कारण यह था कि जब हम लोगों के लिए करुणा और प्रार्थना में खुद को शामिल करते हैं तो हम उनके साथ पहचान करते हैं और यह असंभव नहीं है कि हम उनके पक्ष में चले जाए और परमेश्वर के प्रति जितना हम हैं उससे कहीं ज्यादा उनके प्रति सहानुभूति रखने लगें। और जाहिर है कि परमेश्वर ने महसूस किया कि यिर्मयाह इन लोगों पर परमेश्वर के हाथों होने वाले न्याय से इतना परेशान हो रहा है कि उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ हद तक अलग हो जाओ, मेरे पास वापस आओ। तुम इस बात से बहुत परेशान हो रहे हो। मैं आपको परेशान करने वाली बातों को संभाल लूंगा, लेकिन आपको इन लोगों के प्रति अपनी घोषणा में वफादार रहना होगा ताकि जो लोग पश्चाताप कर सकते हैं उन्हें ऐसा करने का मौका मिले। तो यह एक और उदाहरण है कि कैसे प्रेम विवेकपूर्ण है। हम उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जिन्हें हम भटकते हुए देखते हैं, लेकिन हम उन लोगों के प्रति प्यार को नहीं होने दे सकते जिन्हें हम भटकते हुए देखते हैं, जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। और ऐसा हो सकता है। इसलिए जॉन यह नहीं कहता कि उनके लिए प्रार्थना मत करो। वह कहता है, मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको खुद ही तय करना होगा कि आपको ऐसे लोगों के साथ कितना जुड़ना है जो इस तरह से पाप कर रहे हैं कि इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। हम इस जीवन में नहीं जान पाएंगे क्योंकि जब तक वे मर नहीं जाते हमें नहीं पता कि उनके पापों ने उन्हें ईश्वर से अलग कर दिया है या नहीं, जो हमेशा के लिए है। कुछ लोग अपनी मृत्युशैया पर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। यहाँ अंतिम अवलोकन श्लोक 7:3, सभी गलत काम पाप हैं, लेकिन ऐसा पाप भी है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। तो यह एक ऐसा पाप है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं और क्षमा पा सकते हैं। और यह एक ऐसा पाप है जिसे यीशु दूर करने के लिए आया था और वह इसे दूर करता है। सभी पाप समान नहीं होते। सभी पाप समान नहीं होते। इसलिए पाप के खिलाफ अपने संघर्ष को सिर्फ इसलिए न छोड़ें क्योंकि आप कहते हैं, ठीक है, पाप तो पाप है और मैं पाप का दोषी हूं, तो इसके बारे में चिंता क्यों करें। कुछ पाप वास्तव में ऐसे हृदय का संकेत देते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानता, और हम बस उस निकटता में कहीं भी नहीं रहना चाहते हैं। और भगवान की कृपा और विश्वास के माध्यम से ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें न्याय के डर की स्थिति में रहना चाहिए कि हमें माफ नहीं किया गया है। उद्धार का आश्वासन है। जॉन ने इस भाग में अपने पत्र का समापन किया है जिसे मैं अंतिम चेतावनी कह रहा हूँ, सच्चा परमेश्वर और धोखेबाजों की धमकी। उसने पाप और पापियों के बारे में सलाह दी है और अब वह उस बारे में बात करने जा रहा है जिसे मैं बांधने वाला ज्वार कहता हूँ और उसकी अंतिम देहाती अपील। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, बल्कि वह परमेश्वर से जन्मा है और यही बात उसकी रक्षा करती है। अर्थात मसीह जो परमेश्वर से जन्मा है उसकी भी रक्षा करता है और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें समझ दी है। आप इसका अनुवाद भी अंतर्दृष्टि से कर सकते हैं ताकि हम उसे जान सकें जो सच्चा है, और हम उसमें हैं जो अपने पुत्र यीशु मसीह में सच्चा है। वह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। उन तीनों आयतों में से प्रत्येक में ध्यान दें। हम जानते हैं कि आप जानते हैं, ये कथनों के प्रकार हैं। ये ईसाई धर्म के कथन हैं। ये निश्चितताएं हैं जिन पर हम व्यक्तिगत आस्था का निर्माण कर सकते हैं, और ये कथन पाठकों को उनकी पहचान का आश्वासन देते हैं। सबसे पहले श्लोक 18 में हम जानते हैं कि परमेश्वर से जन्मा हर व्यक्ति पाप नहीं करता, वह सुरक्षित है, दुष्ट उसे छू नहीं सकता। यही हमारी पहचान है, साथ ही सुरक्षा और उत्पत्ति भी। और मैंने यहां पहचान का जिक्र दो बार किया है। मुझे लगता है कि यह सच है। हम जो हैं, हम परमेश्वर से हैं, और हम जानते हैं कि मसीह ने क्या किया है और वह कौन है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें यूहन्ना द्वारा कही गई सभी बातों की जानकारी दी है, ताकि हम उसे जान सकें जो सत्य है। यह जानना जेड निर्देशांक है, यह प्रेम रेखा है, यही ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, यही ईश्वर के साथ हमारा तालमेल है। हम उसे जान सकते हैं और हम उसमें हैं जो सच्चा है, यीशु मसीह। और यह शास्त्रों में उन आयतों में से एक है। वे हर समय ऐसा नहीं करते, लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर कहते हैं। वह ग्रीक सर्वनाम है, ऑटोस है। यह मात्र प्रदर्शनकारी, निकट प्रदर्शनकारी सर्वनाम है। इसका मतलब यहाँ यह व्यक्ति है। इसलिए इसका अनुवाद इस तरह किया जा सकता है, वह इस व्यक्ति पुत्र यीशु मसीह का भी अनुवाद कर सकता है। यह सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। यही वह बंधन है जो हमें बांधता है। हम इस बारे में निश्चितता साझा करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर कौन है, और यही वास्तव में ईसाई संगति का आधार है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या हमें वह भोजन पसंद है जो हम पोटलक डिनर में लाते हैं। संगति के लिए हमारा आधार ईश्वर की पहचान है, जिसने हमें एक साथ रहने का दावा किया है। अंतिम पादरी अपील में छोटे बच्चों, फिर से वही शब्द है, एक वृद्ध आस्तिक की हर किसी के प्रति भक्ति और प्रतिबद्धता। एक प्रेरितिक विश्वासी जो इतना विनम्र है कि वह अपने दूसरे पत्रों में खुद को एक बुजुर्ग कहता है। अपने आप को मूर्तियों से दूर रखें। इफिसुस में मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है। अगर आप प्रेरितों के काम 19 को पढ़ें, तो पाएंगे कि जब चर्च की स्थापना हुई थी तो मूर्ति बनाने वालों ने दंगे किए थे क्योंकि ईसाई अपने व्यवसाय के लिए बुरे थे। सभी ने मूर्तियां खरीदी। इसलिए यह एक ऐसा अर्थ है जिसमें हम मूर्तियों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा व्यापक रूप से बात करें तो आइडल, ईडोलन शब्द वास्तव में हमारे शब्द विचार से मिल खाता है। यह कुछ ऐसा है जिसकी आप कल्पना करते हैं। और ग्रीको रोमन दुनिया में विभिन्न जातियों और विभिन्न क्षेत्रों में सभी देवता थे। अब उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं था, लेकिन वे आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां थीं जिन पर लोग विश्वास करते थे। और इस शब्द का ग्रीक शब्दकोश, जिसे बाउर, डेनकर, अर्नट और गिंगरिच शब्दकोश कहा जाता है, इस शब्द को राष्ट्रों के देवताओं के रूप में परिभाषित करता है जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है, और इसलिए वे वास्तव में कल्पना के उत्पाद हैं, और वे मानव हाथों द्वारा निर्मित हैं। यदि आप उन्हें किसी प्रकार की प्रतिमा, किसी चांदी या लकड़ी या सोने या पत्थर, किसी छोटी मूर्ति के रूप में सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ मूर्तियों के बारे में इतनी चेतावनी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वह उन चीजों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जो लोग मसीह के बारे में या भगवान की आज्ञाओं के बारे में या भगवान के साथ रिश्ते के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में वह 5 अध्यायों से चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी चीजें जो हम कहते हैं आधी बुलबुला दूर हैं, ऐसी चीजें जो सही या सत्य नहीं हैं, और हम खुद को एक धार्मिक प्रतिबद्धता में झोंक देते हैं जो अमान्य है, क्योंकि यह एक कल्पना है। हम आज सुनते हैं, हम सालों से सुनते आ रहे हैं, मैं आध्यात्मिक हूँ लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूँ। मैं आध्यात्मिकता में विश्वास करता हूँ लेकिन मैं चर्च में विश्वास नहीं करता। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मैं ईसा मसीह में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। यह कल्पना है। और मुझे लगता है कि अगर यह आपको अच्छा महसूस कराता है तो यह अच्छा है, लेकिन जॉन इसी बारे में चेतावनी दे रहा है। खुद को उन चीजों की कल्पना करने से बचाए जिनके बारे में आपको शास्त्रों में सच्चाई पता होनी चाहिए और आपको ईसाई समुदाय में अपने जीवन में पुष्टि करनी चाहिए। और जैसे जैसे परमेश्वर का प्रेम आप में परिपूर्ण होता जाता है, आपको उसमें बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे मसीह और उनकी महानता और पिता के साथ उनकी एकता के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, और जैसे जैसे आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा अपने बच्चों के लिए बताए गए मार्ग और शिक्षा पर चलने से अधिकाधिक प्रभावित होता है, ये महान लक्ष्य और प्रगति के महान मार्ग हैं जो हम सभी के लिए हमारे सामने हैं, लेकिन हम कल्पनाओं के कारण पटरी से उतर सकते हैं तो चलिए वहां नहीं जाते। वन यूहन्ना के पाठक या वन यूहन्ना के श्रोता कई तरह की कल्पना कर सकते हैं जो केवल विश्वास के माध्यम से ही सही मायने में जाना जा सकता है, जो प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में कार्यों की ओर ले जाता है। यह पूर्ण स्तरीय विश्वास है। जॉन ने नकली लोगों के खिलाफ सतर्कता बरतने का आह्वान करते हुए निष्कर्ष निकाला, और वह सच्चे विश्वास वाले पुरुषों और महिलाओं के रूप में अपने छोटे बच्चों की स्थिति को बनाए रखने का आह्वान करता है। और मुझे यह पसंद है कि अंतिम छंद में वह उन्हें छोटे बच्चे कहता है। वह उन्हें वापस बुलाता है कि हम सभी वास्तव में कौन हैं। हम एक ऐसे ईश्वर की संतान हैं जो अपनी दृढ़ता और अनुग्रह पर पूरी तरह से निर्भर है, जिसकी कभी कमी नहीं होती। लेकिन कभी कभी जिस चीज की कमी होती है वह है विनम्रता, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और वास्तविकता की जांच जो हमें यीशु मसीह में प्रकट हुए सच्चे ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए मैं उस परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ जो प्रकाश है। संदेश है एक दूसरे से प्रेम करना, विश्वास करना, आज्ञाओं का पालन करना और परमेश्वर के प्रेम का आनंद लेना। मुझे प्रार्थना करने दीजिए। स्वर्गीय पिता, पवित्र शास्त्र के लिए आपका धन्यवाद। आपने जॉन को जो कुछ भी सिखाया और जो सबक आपने उसे सिखाया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने समय और समय में उन्होंने समुदाय को जो सबक सिखाए उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच चले और काम करें, हमें ये सबक सिखाए और हमें हमारे समय में वैसा चर्च बनने में मदद करें जैसा आपने चर्च को कहा था। जॉन का दिन हो। इस दुनिया में और अनंत काल तक आपकी महिमा के लिए मसीह के नाम में आमीन। यह डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो और जोहानिन एपिस्टल्स बैलेंसिंग लाइफ इन क्राइस्ट पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र 8-1 जॉन फुल स्केल फेथ है। खंड 6-4-155-15 आवश्यक निर्देश। खंड 7-5-16-21 समापन चेतावनी।